सबको आराम करने के लिए भेजने के बाद दादाजी ने अविनाश की ओर देखा और कहा, क्या बात है बेटा, आप भी बहुत थक गए होंगे, जाइए और जाकर आराम कीजिए। पूरी रात भाई साहब दवाइयों के असर में सोते रहेंगे, इस तरह से ठीक नहीं है। ये सुनकर अविनाश ने नम आंखों से दादाजी की ओर देखा और बोला, आप नहीं जानते दादाजी, मेरे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अविनाश की बातें सुनकर आलोक जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बड़े ही प्यार से बोले, बेटा हम अच्छी तरह जानते हैं, वाकई भाई साहब बहुत किस्मत वाले हैं कि उन्हें आपके जैसा पोता मिला है, लेकिन फिलहाल आपको भी अपना ख्याल रखना होगा, इस वक्त आपको आराम की जरूरत है, अगर आप लोग आराम नहीं करोगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा, जैसे ही उन्हें होश आएगा हम आपको तुरंत खबर कर देंगे, अब जाइए और आराम कीजिए। दादाजी की बात सुनकर अविनाश ने धीरे से अपनी गर्दन हिला दी, मानो वो कहना चाहता हो कि दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दादाजी वैसे भी अगली सुबह ही उठेंगे ये सुनिश्चित होने के बाद अविनाश ने एक गहरी सांस ली। उसने हॉस्पिटल के बाहर खड़े दादाजी को एक नज़र देखा और फिर एंजल के साथ कमरे में आराम करने के लिए चला गया। तभी नानी माँ ने आलोक जी को देखकर कहा, भाई साहब आप ठीक तो है ना, अब आप जाकर आराम कर लीजिए, हम यहाँ रुक जाते हैं। ये सुनकर दादाजी बोले, कैसी बातें कर रही हैं आप, आराम तो आपको करना चाहिए, हम यहाँ रुकते हैं। दोनों में जैसे इस बात को लेकर बहस छिड़ गई। नानी माँ मुस्कुराकर बोली, आप भी ना, अच्छी तरह जानते हैं कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, ऐसा करते हैं दोनों यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद नानी माँ और दादाजी वहीं रुक गए और अधिराज जी की ओर देखने लगे। वहीं नानी माँ गहरी नज़रों से अधिराज जी को निहाल रही थीं। जितनी देर वो उन्हें देखती उतना ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता। आखिरकार नानी मन ही मन बोली, ये मुझे क्या हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम पहले से ही इन्हें जानते हैं, अधिराज को देखकर आखिर हमें इतना अजीब क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि हम इनसे पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन कहाँ मिले थे, हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। नानी माँ अपनी धुंधली यादों पर जोर देने की भरपूर कोशिश कर रही थीं, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने अधिराज जी को कहाँ देखा था। फिलहाल इस सबसे अनजान अरमान अपने कमरे में आस्था के साथ मौजूद था। आस्था अरमान के सीने से लगी बैठी थी। आहान कुछ वक्त पहले ही अंश को उनके पास सुलाकर सीधे अपने कमरे में चला गया था। वहीं अरमान आस्था को अपनी बाहों में संभाले हुए उसकी पीठ सहला रहा था। तभी उसने पूछा, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं, क्या हुआ है। आस्था ने एक गहरी सांस ली और बोली, पता नहीं अरमान जी, अजीब सा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आस्था की ये बात सुनकर अरमान एक पल के लिए हैरान रह गया, हालांकि अगले ही पल उसने अपने जज्बातों को काबू में किया और बोला, आपको किसी भी तरह की फालतू बातों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, और वैसे भी अगर आप अपने दादा को लेकर परेशान हो रही हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही आस्था ने अरमान के सीने में और कसकर अपना चेहरा छुपा लिया और धीमी आवाज़ में बोली, आप नहीं जानते अरमान जी, बहुत दिनों बाद हमें हमारा परिवार मिला है, हमें हमारा भाई मिला है, दादा मिले हैं, एक भरा पूरा परिवार मिला है, लेकिन आप नहीं जानते, हमारी किस्मत कभी हमारा साथ नहीं देती, जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई खुशी आती है हमारी किस्मत उसे हमसे छीन लेती है। उसकी आंखें भर आईं। हमारे पहले ही जन्मदिन पर हमारे माँ बाप की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिन लोगों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया उनकी भी हत्या कर दी गई। तब से लेकर आज तक हम एक वीरान जिंदगी जी रहे थे। अब हमारी ज़िंदगी में प्यार है, अपनापन है, सब कुछ है, लेकिन दादाजी को खोने का डर हमें लगातार सता रहा है अरमान जी। ये सुनकर अरमान ने प्यार से आस्था के माथे को चूम लिया और कहा, शांत हो जाओ, अब तुम्हें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये कहते हुए अरमान ने बड़े प्यार से आस्था के गालों को सहलाया। आस्था ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो खुद को उसकी बाहों की गर्माहट में पूरी तरह सौंप देना चाहती हो। अरमान ने उसे और करीब खींच लिया और प्यार से अपनी बाहों में समेट लिया। धीरे धीरे वो उसकी ओर झुकने लगा। आस्था ने भी अपनी आंखें बंद रखकर उसकी भावनाओं का मौन समर्थन किया। आस्था की बंद आंखों को देखकर अरमान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। अगले ही पल उसने आस्था को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया और दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खो गए। फिलहाल वहीं दूसरी ओर इस वक्त अबीर सिंह राठौर प्रियंका के साथ सिंघानिया मेंशन के गेस्ट रूम में मौजूद था। इस वक्त प्रियंका बेड पर बैठी हुई थी, उसकी आंखों में अनगिनत ख्याल तैर रहे थे। घबराहट के कारण वो लगातार अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ रही थी। अभय ने उसकी बेचैनी को तुरंत भांप लिया। वो धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी ओर देखकर बोला, प्रियंका मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, ये सब तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम पहले कैसी हुआ करती थी और अब कैसी हो। वक्त और हालात ने तुम्हें पूरी तरह बदल कर रख दिया है, और सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा ये बदला हुआ रूप बहुत पसंद आया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी एक आदर्श पत्नी बनोगी। अबीर की बातें सुनकर प्रियंका की आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत उसकी ओर देखा और उसका हाथ थामते हुए बोली, अबीर जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी किसी तरह की कोई शिकायत का मौका ना दूं। मैं हमेशा आपकी हर बात मानूंगी। आखिरकार आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है, जीने का एक नया मकसद दिया है, वरना मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। ये कहते कहते प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोता देखकर अबीर आगे बढ़ा और उसने प्रियंका को अपने सीने से लगा लिया। प्रियंका की पूरी तरह खुद को उसकी बाहों में छोड़ चुकी थी, लेकिन अबीर ने केवल उसे अपने गले से लगाए रखा। उसने उससे आगे किसी भी तरह का रिश्ता कायम करने की कोशिश नहीं की। प्रियंका को यह थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, शायद अबीर इसलिए हमारे करीब नहीं आ रहे हैं। आखिरकार आज ही तो हमारी शादी हुई है, हम एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं है। इतने बड़े हादसे के बाद इस तरह अचानक करीब आना भी तो ठीक नहीं होगा। ये सोचकर प्रियंका भी उस वक्त शांत हो गई। अबीर लगातार उसे समझाता रहा, उसका मन बहलाता रहा और धीरे धीरे उसे सुला दिया। प्रियंका के सो जाने के बाद अबीर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसके गहरे गहरे कश लेने लगा। आज जो कुछ भी हुआ था वो बार बार उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। राजवीर सिंघानिया और सम्राट दोनों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी, लेकिन आखिरी वक्त में सम्राट और राजवीर जिस तरह से पूरी तरह शांत दिखाई दे रहे थे, उसके चेहरे पर किसी भी तरह का डर या पछतावा नहीं था। वही बात अबीर को बार बार परेशान कर रही थी। वो मन ही मन गुदगुदाया, जब सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं तो मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। उनके मरने के बाद तो मुझे किसी बात के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आखिरकार मुझे हो क्या क्या है। इस वक्त अबीर का मन पूरी तरह उलझा हुआ था। कुछ देर बाद उसने एक गहरी सांस ली और बालकनी से खुले आसमान की ओर देखने लगा। फिर दृढ़ स्वर में बोला, अगर मुझे यह एहसास हो रहा है कि अभी भी सारे दुश्मन खत्म नहीं हुए हैं, तो मैं बाकी के दुश्मनों का भी पता लगाऊंगा। मैं अपने परिवार पर, सिंघानिया मेंशन पर किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आने दूंगा, खासकर आस्था और अरमान की जिंदगी में। ये सोचते ही अबीर के चेहरे पर एक हल्की लेकिन खतरनाक मुस्कान उभर आई। वहीं दूसरी ओर आस्था और अरमान कई घंटों तक एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खोए रहे थे। अब दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे।
आस्था ने अपना सिर अरमान के सीने पर रखते हुए धीमी आवाज में कहा, अरमान जी, आपको हमसे एक वादा करना होगा। आप पूरी जिंदगी इसी तरह हमारे साथ रहेंगे और कभी भी एक पल के लिए हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप जानते हैं ना कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर अरमान हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने प्यार से आस्था के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, आफत, तुम ही तो अरमान सिंघानिया की जिंदगी हो, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि अरमान सिंघानिया की जिंदगी का मतलब क्या होता है। ये सुनकर आस्था का चेहरा शर्म से लाल हो गया। नहीं अरमान जी, आपको हमसे वादा करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा हमारे पास रहेंगे, प्लीज। अरमान मुस्कुरा दिया, लेकिन इससे पहले कि वो आस्था को कोई जवाब देता, अचानक पास में सोए अंश के झूले से रोने की आवाज आने लगी। अंश के रोते ही आस्था तुरंत अरमान से अलग हुई। उसने फौरन चादर से खुद को ढक लिया, क्योंकि इस वक्त उसने कुछ नहीं पहना था। फिर जल्दी से बोली, अरमान जी, हम फटाफट वॉशरूम जाकर चेंज करके आते हैं, तब तक प्लीज अंश को संभालिए, वो रोना नहीं चाहिए। आप सुन रहे हैं ना हमारी बात। अरमान ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। आस्था जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई वॉशरूम की ओर चली गई। हालांकि वो कमरे में भी कपड़े बदल सकती थी, लेकिन अंश के सामने कपड़े बदलना उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। जैसे ही आस्था वॉशरूम के अंदर गई, अरमान उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी शर्ट और लोअर पहना और लंबे कदमों से अंश के झूले के पास पहुंच गया। उसने झूले में लेटे अंश को देखा और गंभीर स्वर में बोला, क्या हुआ अंश अरमान सिंघानिया, इस तरह रोने की क्या जरूरत है? तुम कोई मामूली बच्चे नहीं हो, तुम अरमान सिंघानिया के बेटे हो और तुम्हें मजबूत बनना होगा। इतना मजबूत कि कोई कभी भी तुम्हें बर्बाद करने के बारे में सोच भी ना सके। सुन रहे हो ना मेरी बात। उधर आस्था वॉशरूम में अपना बाथरूम ले जाना भूल गई थी, इसी वजह से वो वापस कमरे में जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अरमान को अंश से इस तरह बातें करते हुए सुना, उसके कदम वहीं ठिठक गए। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में एक अजीब सा कंपन दौड़ गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं और वो कुछ क्षणों तक बस अरमान को देखती रह गई।